Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. अगले आधे घंटे में हम आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा समाचार लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे. उदयन नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सोनू.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी.
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 26,000 करोड़ रुपीज इन जगदलपुर छत्तीसगढ़ एंड 8,000 करोड़ रुपीज इन निजामाबाद तेलंगाना टुडे. की डोमेस्टिक शेयर इंडस्ट्रीज एंड अराउंड 0.5% डाउन. सेंसेक्स क्लोजेस नियर द 66,500 मार्क. निफ्टी सेटल्स बिलो 19,550 लेवल. एंड ब्रेंट क्रूड ऑयल फॉल्स टू हवर अराउंड $90 पर बैरल.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए और तेलंगाना के निजामाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट में रहे. सेंसेक्स 66,500 के करीब और निफ्टी 19,550 के नीचे हुए बंद. और ब्रेंट कच्चा तेल सस्ता होकर $90 प्रति बैरल के करीब पहुंचा.
In our top story, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of development projects worth more than 26,000 crore rupees in Jagdalpur, the divisional headquarters of the tribal Bastar division in Chhattisgarh today. The Prime Minister also dedicated to the nation the NMDC's greenfield steel plant established at Nagarnar in Bastar. Built at a cost of about 24,000 crore rupees, the integrated steel plant will produce high-quality steel. This plant and its ancillary industries will generate employment opportunities for thousands of people. During his visit to Jagdalpur, the Prime Minister also laid the foundation stone for the upgradation of Jagdalpur railway station and also dedicated to the nation the new rail line between Antagarh and Taroki and the double rail line project between Jagdalpur and Dantewada. Prime Minister also flagged off the train service between Taroki and Raipur. These projects will improve rail connectivity in this tribal area and give an impetus to the economic development of the area. Besides, the Prime Minister also dedicated to the nation the new road built between Kankuri and Chhattisgarh-Jharkhand border on National Highway 45.
Udhar Pradhan Mantri Narendra Modi ne aaj Telangana ke Nizamabad mein 8,000 crore rupaye se adhik ki kai vikas pariyojanaon ki aadharshila rakhi aur rashtra ko samarpit kiya. Pradhan Mantri ne aaj मनोहराबाद सिद्दीपेट को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन और धर्माबाद मनोहराबाद तथा महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की. प्रधानमंत्री ने रामागुंडम में एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की 800 मेगावाट की पहली इकाई भी राष्ट्र को समर्पित की. इस संयंत्र की 85% बिजली का उपयोग राज्य में ही किया जाएगा. इससे उत्तर दक्षिण ग्रिड कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा. प्रधानमंत्री ने 20 जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत 50 बिस्तरों वाले आधुनिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखी. इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पेदापल्ली में नया बिजली संयंत्र देश का सबसे आधुनिक संयंत्र है और इसके दूसरे चरण में जल्द ही एक और बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य का विकास बिजली उत्पादन के लिए उसकी आत्मनिर्भर क्षमता पर निर्भर करता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तेलंगाना की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है. क्या कहेंगे आप उदयन, जो एक सरकार की जो एक मुहिम है कि पूरे देश में जो लास्ट माइल तक सबको जो विकास है उसका फायदा हो, उसको देखते हुए जो ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं, खासकर अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो ट्राइबल बस्तर जो रीजन है उसमें कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इनको?
देखिए, ये यहाँ पे आप जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे अफेक्टेड एरियाज हैं डेवलपमेंट के ना आगे बढ़ने की वजह से. सोशल टेंशन्स तो हैं, पीछे से हैं और उनको आप बड़े जो परियोजनाएं जब आप लगाते हैं तो मान लीजिए एक स्टील प्लांट लगाते हैं उसके साथ जुड़े हुए कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो चालू हो जाती हैं। स्टील प्लांट मतलब एक स्टील मतलब ऑलमोस्ट एक शहर नया तैयार हो जाता है। दूसरी बात जो है ऐसे इलाके में नॉर्मली आप अगर प्राइवेट सेक्टर या सरकारी जो ध्यान रहता है वो केंद्रित रहता है वो इलाके जहां पे सड़कों के साथ लिंकेज आपकी अच्छी है समंदर के पास जो इलाके हैं वहां पे हैं तो जैसे वो हटके जहां पे नेचुरल हिस्टोरिकली आप निवेश हो रहा है बिजनेस एक्टिविटी हो रही है वहां से जब आप दूसरी जगह में जाके और उसमें सरकार को ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सरकार के पीछे आती है तो आप आगे चल के देखेंगे इन इलाकों में जहां पे आपने पावर प्लांट्स कर रहे हैं और आपने स्टील प्लांट लगाया है फिर कनेक्टिविटी की है वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे देश में एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का ज्यादा नहीं है वो कई बार बड़े शहरों में बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशंस में रहते हैं तो माइग्रेशन में भी हैपहैजर्ड अर्बनाइजेशन ना हो और जहां पे इलाका है वहीं पे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है तो वो न केवल वो इलाके बेहतर होंगे पर जो नए शहर हैं या एग्जिस्टिंग शहर उनमें जो जबरदस्त दबाव बढ़ रहा है उसमें भी एक रैशनलाइजेशन आएगा।
So we're talking about NMDC involvement here to be able to exploit the metals and mineral from these areas in a economically viable manner with the road transport facilities, road connectivity. We're talking about last mile connectivity as well, a supply chain network that can be connected to the freight trains to the factory system itself. So what does this mean for the state's GDP?
Actually, Arjun, this is a very the area where the news item was read. It's a very mineral rich area. You know, if you look, it's slightly northwest kind of Odisha and Chhattisgarh and Jharkhand. It's the you can call it the mineral hub of the country. Now, and it has got some traditional issues, you know, because here it's a tribal sort of areas and development has suffered in a comparative scale simply because the road connectivity is not there. It's very forested. There's a lot of dispersion that's happening. And one thing leads to the other. But what this does is when you connect it well, what it happens is it creates new markets. It creates new economic opportunities for people who are staying there, then you can get skilled people coming out there and working out there. So, you know, we had this model going on, you know, all these steel townships and petroleum townships and all that. Now, they do a lot of, they bring in a lot of action. But Arjun, I think more than these mega projects, and of course they create their economic activity, etc. There's no doubt about it. But what happens is when you actually link up places through roads and when you're putting up power plants, you know, power plants, a simple thing that a power plant does is, you know, in the evening you're getting those many hours to do something meaningful, you know. Your economic activity doesn't, you know, stop at sundown. So those are very important things and it creates new services, it creates new activities. So it just expands the whole thing. It creates new markets, you know. There are things that you'll be able to do and sell. Those things start happening. And then if there are indigenous produce that's happening, whether it's handicrafts or fruits or vegetables that are being done there, or it is not being done there, but now you can get those things done. So all those things start happening, and these are really some of these areas are challenging areas. You know, Dantewada and all. We know the kind of difficult history in the past it has. So these are good places where action is required, and it looks promising.
So, जो सरकार की काफी सारी स्कीम्स हैं जैसे वोकल फॉर लोकल, या जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रोडक्शन बाय मासेस हो रहा है हमारे देश में, रादर देन मास प्रोडक्शन तो हो ही रहा है लेकिन प्रोडक्शन बाय मासेस, तो छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो कहें कि विभिन्न स्कीम्स द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसके लिए भी आपको लगता है कि सक्सेसफुल हो उसके लिए जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रेल हो, रेल की कई परियोजनाओं का भी आज अनाउंसमेंट हुई है, रोड कनेक्टिविटी हो, ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और कई बार क्या होता है सोनू, रेल कनेक्टिविटी तो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको रेल और रोड दो ही दो सामान ले जाने के वो है, पर अगर आप सड़कें भी बनाते चले जाएं, कई ऐसे देश हैं जहां पे कई सालों तक सिर्फ सड़कें ही बनती रही, अमरीका का एग्जाम्पल लिया जाता है, जहां पे कहा जाता है कि 50 के दशक में सिर्फ सड़कें बनती रहीं और उन सड़कों के बनने की वजह से ही आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक जबरदस्त उछाल आया, सड़कों के किनारे मोटेल्स बने जहां पे छोटे छोटे लोगों ने अपने व्यवसाय शुरू किए। तो कई बार क्या होता है कि ये जो ढांचा, मूलभूत ढांचा से जुड़ी हुई जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, एक्सपेंडिचर्स जो करते हैं, कई बार वो एकदम से नहीं दिखता उसके फायदे, पर एक इलाके को डेवलप करने में बहुत फर्क पड़ जाता है, जहां पे इकोनॉमिकली इकोनॉमिक्स को पलट देता है। मान लीजिए एक इलाके को रीच करने में आपको 4 घंटे लगते हैं, वो अगर 1 घंटे में पहुंच जाते हैं या 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, सडनली आपके लिए एक मार्केट तैयार है, आपके लिए सोर्स करने का हिसाब किताब बन जाता है और पूरी बिजनेस एक्टिविटी का एक नया अध्याय खुल
जैसे कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन वहां
बहुत ही, उसको आप मिनरल का हब जिसे कहते हैं वो आप कह सकते हैं उसको।
आइए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 66,500 के करीब रहा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,550 के नीचे आ गया। दोनों सूचकांकों में यह गिरावट नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच आई। कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 316 अंक कम होकर 65,512 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 110 अंकों की गिरावट से 19,529 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.1% की बढ़त में रहा, हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई।
The key domestic share indices today ended around 0.5% down. The BSE Sensex closed near the 66,500 mark, while NSE Nifty ended below 19,550 points. Both stock indices fell marginally amid negative global cues. Sensex finished 316 points down at 65,512, while Nifty settled 110 points down at 19,529. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.1% and the small-cap index declined 0.6%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 11 companies appreciated while 19 companies declined. Bajaj Finance climbed 2%, Larsen & Toubro gained 1.7% and Titan rose 1.5%. On the other hand, Maruti plunged 2.5%, NTPC declined 1.8% and Tata Motors added 1.6%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors logged gains while 5 fell. Capital goods gained 1% and consumer durables rose 0.8%. On the other side, oil and gas declined 1.3% while energy and bankex both fell 1.2%. The overall market breadth was negative as shares of 1,905 companies declined and 1,872 companies gained. A total of 179 shares remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर दिवसीय विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया, माफ कीजिएगा, अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.21 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 107.14 पर था। उदय, क्या कहेंगे आप, पिछले महीने हमने देखा कि निफ्टी 20,000 को क्रॉस कर गया था और काफी दिन रहा था, 3-4 दिन उस लेवल पर, और लग रहा था कि शायद एक कंसोलिडेशन हो गई है उस पॉइंट पर, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि बाजार में एक गिरावट का दौर हम देख रहे हैं कई दिनों से, इसके क्या कारण आपको दिखाई देते हैं और आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स?
देखिए, तीन चीजें जो कि डिस्कस की जा रही हैं, एक तो आपके डॉलर में मजबूती आनी है, दूसरा तेल के जो दाम है अभी भी 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर है, तीसरी बात है जो अमरीकी डेट मार्केट्स हैं वहां पे वो ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ये एक्चुअली तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं और ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि एकदम से आ रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, ये तीनों इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे यहां पे राना पच्छा रहा था तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत जहां जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे तो उन लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े से रिच हो गए वहां से शायद ऑफ द टेबल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो, पर इसके बारे में मुझे लगता है, मैं कन्फर्म करके नहीं कह पा रहा हूं। दूसरी बात है मार्केट मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ क्यूज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जगह से क्यूज लेंगी। एक तो शुक्रवार को आपके अमेरिका में यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स निकलने वाले हैं, उससे फेडरल रिजर्व का क्या रुझान रहेगा, रुख रहेगा इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बारे में आगे चल के, वो लोग फेडरल रिजर्व को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा भारत में आरबीआई का भी, तो शुक्रवार तक शायद एक कंसोलिडेशन या एक रेंज बाउंड जो बात है, मतलब एक्टिविटी है, शायद ऐसा रहे।
उदयन, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स, देयर इज अ माइनर करेक्शन दैट टाटा मोटर्स स्लिप 1.7% एंड डिड नॉट गो अप बिकॉज वी सॉ ए प्लंज इन द मार्केट इन सेक्टर्स 15 इन ऑल। FIIs were the net sellers to the tune of 2,030 crore rupees, and this was offset to some extent by the DIIs being the net buyers to the tune of 1,361 crore rupees. And we've seen a slide in the market since last week. Now that the markets have reopened, what's your take? Will there be a further correction in the market? It fell by 316 points. How would you advise small investors in this point in time?
If there are investors who are not traders, I mean, I don't think I'm even qualified to address that category of participants. But in terms of investors, they don't have to do anything which they were not doing in the past. And if you're investing in stocks, you look at individual stories, you see a visibility in terms of earnings. If you are convinced, it's almost like when you're buying in the market, you want to be a partner with the company. You want a part of its success story. The idea is not to make a quick buck, you see a sense that over a longer period of time, say 5-6 years, the company will continue to reward. So now if you're looking like that, then I don't think it's going to be a big issue. And never ever keep investing in one particular area. So if everybody is talking about say IT or auto at one point, never ever jump on the bandwagon. Make sure that, you know, it's like a
diversified.
Yeah, absolutely, like a nice thali, whether it's a southern Indian or a north Indian thali, it should be different stuff should be there. And what it does is it actually makes sure that any particular risk in a particular sector, so suppose there's a tractor manufacturing company and that company is probably getting affected at the moment, but there's another company which is completely into passenger vehicles or is into some other areas, some kind of high skilled kind of high value output it's producing, technological. So then you can balance things and make sure that on an average you're getting a good return. So that's one thing you do, and then you look at it at a slightly longer horizon.
आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी, स्वादिष्ट एनालॉजी दी थाली की। तो अगर हम इस थाली की बात करें, विभिन्न सेक्टर्स को आपने विभिन्न डिशेस की तरह प्रेजेंट किया, क्या लगता है आपको अब जो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है उसमें कौन से सेक्टर्स चमकेंगे और किनमें शायद नमक थोड़ा कम होगा या मिर्ची ज्यादा होगी, स्वादिष्ट नहीं होंगे?
देखिए, इसमें आईटी जो स्टॉक्स हैं उनके कुछ चैलेंज तो बरकरार हैं, तो वो वहां पे कैसे रिजल्ट्स निकलेंगे वो देखना पड़ेगा। कुछ कुछ कंपनी कुछ एरियाज हैं जहां पे बेहतरीन काम हो रहा है, मतलब बेहतरीन रिजल्ट्स अभी भी दिख रहे हैं, जैसे जहां पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वहां पे हो रहा है, पर जो जहां पे रूरल कंजम्पशन वाली जो स्टोरी है वहां पे एक अभी भी चैलेंज नजर आ रहा है। जहां पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं वो एक इलाका है जिसमें अनरैवल कर रहा है, मतलब अनवेल हो रहा है कि क्या इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि अनइवन सा रहा है मॉनसून का इम्पैक्ट, तो उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, क्या वहां पे सरकार आके कुछ कदम उठाएगी या दूसरी जगह में बेहतरीन हुआ है तो वो आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक से कहना बड़ा मुश्किल है, पर कुछ कुछ इलाकों में आपको प्रॉमिस दिखेगा, पर वो बात वहीं पे आ जाती है कि कौन से कंपनीज हैं जिनके पास जिन्होंने कर्जे कम ले रखे हैं, अनइनकम्बर्ड कैश फ्लोज हैं, रिजर्व्स अच्छे हैं, अनइनकम्बर्ड कैश फ्लोज हैं, और जो कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं। और आप पाएंगे कि ज्यादातर कंपनी जो आपके निफ्टी पैक में है वो दे आर परफॉर्मिंग प्रीटी वेल, और उन्होंने ये जो पीछे पैंडेमिक का जो प्रेशर रहा है दे हैव कम आउट ऑफ इट एंड मोर एफिशिएंट हो गए, तो ऐसे आप पाएंगे।
Well, in today's vegan thali, Udayan, we saw PSU banks and capital goods go up, PSU banks by 124 points on their index and capital goods by 480 points. So in a day of losses, as far as the Sensex is concerned, we saw PSUs and PSU banks and capital goods go up. Why?
Well, Arjun, PSU banks, the overall bit, I wouldn't be surprised if it's a rotational kind of a thing. You know, you're rotating, you've had enough of one particular sector and you want to go. But PSU banks is very interesting and exciting because all the pain and all the toxicity that was there in the system, I think it has been more or less purged out. And, I mean, some of the numbers are very heartening. I mean, when you look at NPAs and other I mean, a couple of years back, you would go and you would start, you know, scratching your head, what's going on. Things are far better. They look pretty nice. And they're actually primed, you know, when economic activity picks up further. I mean, globally, it picks up further. You will find these banks and the NBFC, they'll be in a position to grow with the real economy because they'll have to give loans and other things. So that's these are some of the things that I think are at play.
उधर आपने अभी मेंशन किया था कि आरबीआई की कल मीटिंग शुरू होने वाली है और फ्राइडे को अनाउंसमेंट होगी एमपीसी की मीटिंग, आपको उससे क्या आशाएं हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर और खासकर कमेंट्री को लेकर? बिकॉज अगर हम जो लेटेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं उन पर नजर डालें तो जीएसटी अगस्त में 1.59 लाख करोड़, सितंबर में 1.6 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया, कोर ग्रोथ 14 मंथ हाई पे रही 12.1%, जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है। सो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि किस तरह की कमेंट्री आएगी और वो बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है?
देखिए, कमेंट्री में तो बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं कि मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई जो बात है वो ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि अभी भी वो आरबीआई के जो कम्फर्ट थ्रेशोल्ड है उन्होंने एक 4-6% का बैंड बना के रखा है, उससे तो अभी भी ऊपर है। जब तक उसके नीचे नहीं आएगी तो हम मान के चल सकते हैं कि कमेंट्री में इन्फ्लेशन के बारे में वो क्या करेंगे या क्या सोचते हैं उसके बारे में वो बात करेंगे। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो बातें हैं, फूड इन्फ्लेशन वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे। वो दूसरे करेंसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके बारे में कमेंट्री हो सकती है, उससे जुड़े हुए कदम हो सकते हैं, और मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई जो ब्याज दर का जो लिंकेज है उसके बारे में भी बातचीत वहीं से ही निकलेगी। तो काफी कुछ जो है इन्फ्लेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई इंटरेस्ट रेट है उसके इर्द गिर्द जो है, कम से कम मेरे जैसे लोग वही कमेंट्री में ये या नैरेटिव में जो भी है गाइडेंस में ये चीज को हम ढूंढेंगे।
तो आपको लगता है कि वो भी एक क्रूशल ट्रिगर रहेगा?
बिल्कुल, वो कॉर्नर स्टोन ही होगा।
Let's move on to some more news, this time from the Asian markets.
Absolutely. एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था, अच्छी खबर नहीं है। हांगकांग का हैंगसेंग 2.8% लुढ़क गया, जापान का निकेई सूचकांक 1.7% के नुकसान में रहा और सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम सूचकांक 0.5% की गिरावट पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया और चीन के शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण आज बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी मंदी का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.1% के नुकसान पर था। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 0.7% की गिरावट चल रही थी।
मूविंग ऑन टू द यूएस मार्केट्स, द S&P 500 एंडेड नियरली फ्लैट यस्टरडे विद यूटिलिटीज फॉलिंग शार्पली एंड इन्वेस्टर्स वेइंग द लाइक्लीहुड द फेड रिजर्व विल नीड टू होल्ड इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर लॉन्गर। द नैसडैक कंपोजिट इंडेक्स डिक्लाइन 0.7% एंड द डाउ जोन्स एवरेज फेल 0.6%. Udayan, the Fed discount rate, which is the equivalent of the repo rate, is at 5.5%. It's unchanged. To what extent do you see the Fed Reserve continuing with this unchanged discount rate? Because inflation is now at 3.67% as compared to 8.26% last year. So do you see them resolving the inflation issue facing the U.S.?
Well, most people are almost unanimous, even the markets, that there is one more rate hike in the offing this year. And you can expect Fed to, they made it into some kind of a milestone, you know, 2%. They want to go there and they keep talking about a 2%. It's become one kind, some holy kind of stuff. And as long as they're going to keep, try and do that, you can expect them not. One thing is then it rules out is a rate cut happening anytime soon, and they'll probably only start thinking about it only when they see that you know, housing prices going down, some softening in terms of pay hikes, wage costs, and also unemployment figures going up. When they see some of these things happening, that's when they'll say, okay, there's no rate cut, no rate hike, and they'll stop. And all those people who are pining for a rate cut will probably have to wait for quite some time.
आपको लगता है कि थोड़ी सी analogy हम चाइना से कर सकते हैं, जहां पर इतने कड़े कोविड कंट्रोल मेजर्स किए गए कि इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। सिमिलरली आपको लगता है यहां भी एक ऑब्स्टिनेट 2% टारगेट पर?
देखिए, ऑब्स्टिनेट तो है, पर उनकी इकोनॉमी अभी भी 2.1% में ग्रो। अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, जो चाइना हमसे 6 गुना ज्यादा है, उससे भी कई कई उसके भी एक मल्टीपल ऑलमोस्ट कह सकते हैं यूएस है। तो इतने बड़े इकोनॉमी जब 2% से ग्रो कर रही है तो अभी भी है, और वहां पे अभी भी फिगर्स सॉफ्टनिंग नहीं दिखा रहे हैं, मतलब सिग्निफिकेंट। तो इसलिए दोनों का कंपैरिजन शायद सही नहीं होगा।
Let's have a look at the oil market now. Oil prices today fell more than 0.5% amid stronger US dollar and a darkening global macroeconomic outlook and mixed supply signals. In intraday trade, Brent crude was trading at $90.10 per barrel. West Texas Intermediate WTI crude price was at $88.35 per barrel when reports last came in. Udayan, even though oil prices fell marginally today, it's still at $90 if you look at Brent crude, and the US dollar index is at 107. What does this mean for countries importing oil in terms of the bill, and for consumers who have to pay the price for it?
Oh, not good at all. And I don't think we like the figure of 90. We have brought that into our calculations, but we just can't help it. We'll have to bear the brunt. But Arjun, compared to other countries, almost every other country, we are much better in managing inflation. Because we have gone through bouts, our government understands, our corporate sector understands, even households understand. So we are a little better in managing these situations than countries which for decades haven't experienced high inflation.
आइए चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 740 रुपए की गिरावट से 56,365 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 2,850 रुपए की भारी गिरावट से 67,035 रुपए प्रति किलो पर थी। वैश्विक बाजारों की बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,841.60 प्रति आउंस पर था। चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $21.25 प्रति आउंस पर थी। आपका क्विक कमेंट, जो इतनी भारी गिरावट भारतीय बाजार में आ रही है सोने में, चांदी में, क्या लगता है आपको, क्या इसके कारण है?
ये कुछ टेम्पररी ही कारण होगा, क्योंकि आज ये ऐसे एक दिन में हो रहा है जहां रुपयों में रुपी वीकन हुई है, और जैसे कि हम जानते हैं हम इम्पोर्ट करते हैं और गोल्ड डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो ये इसके कुछ और एक्सप्लेनेशन है, स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। पर आगे चल के गोल्ड जो है, गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट, वो बरकरार रहेगा जब तक
फेस्टिव सीजन में कुछ
मिले। वो तो कंज्यूमर है, और इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बरकरार रहेगा। सिंपली जब भी आप में एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, टोटली प्रेडिक्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक गोल्ड इज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट।
समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन, आप आए और हमारे श्रोताओं को आपने विभिन्न विषयों पर बहुमूल्य जानकारी दी।
धन्यवाद।
एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज इन निजामाबाद तेलंगाना टुडे। Key domestic share indices end around 0.5% down. Sensex closes near the 66,500 mark. Nifty settles below 19,550 level. And Brent crude oil falls to hover around $90 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.